इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में आप सभी प्रभु प्रेमी, समाज प्रेमी, सेवा प्रेमी, जन प्रेमी महानुभावों का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम जिसका विषय है समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी अध्यात्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से आप अपना स्वागत स्वीकार करें। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा परम श्रद्धे परम आदरणीय राजयोगिनी हमारी संतोष दीदी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। एक बार उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। आप सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी, अरावली की वादियों पर ज्ञान सरोवर के आंगन पर आपके शुभ आगमन से खुशियां छाई हैं। इस घर पर आपका ये घरबार है, प्यारा प्रभु परिवार है, अपने घर में आपका स्वागत बारंबार है, आप सभी का स्वागत बारंबार है। जिस स्थान पर आप सभी यहाँ पर विराजित हैं, ये स्थान पूरे विश्व में परमात्मा ज्ञान को देने के निमित्त है और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आप इस स्थान पर पधारे हैं। समाज सेवा प्रभाग के द्वारा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो आप सभी के लिए आयोजित होने जा रहा है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत गहरी जीवन के लिए और किस तरह से आप अपने कर्म क्षेत्र पर अध्यात्म को जीवन में शामिल करके अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान आपको मंच से दिया जाएगा। आप सभी से हमारा नम्र निवेदन है कि जब ये सेशंस चले तो आप बिल्कुल रुचिपूर्वक और अलर्ट होकर के आप पूरा सेशन सुनेंगे ध्यानपूर्वक, और खास आपने अपना समय निकाल करके आप इस स्थान पर आए हो। इस स्थान का, यहाँ के वातावरण का और यहाँ के बहुमूल्य ज्ञान का इसको धारण करें, इसे अपने जीवन में आत्मसात करके यहाँ से लौटे, तभी आपका यहाँ आना सार्थक होगा। जिस विद्यालय में आप बैठे हैं, ये विद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ पर परमात्मा का दिव्य ज्ञान हर एक वर्ग, हर एक जाति, हर एक संस्था, हर एक मनुष्यात्माओं के लिए है। परमात्मा के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए ब्रह्म कुमारीज बहुत श्रेष्ठ कार्य कर रही है। 1937 से ये विद्यालय की स्थापना हुई और इसके स्थापनकर्ता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, जिन्होंने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस ज्ञान को पूरे विश्व में पहुंचाया। ब्रह्म कुमारीज एकमात्र ऐसी संस्था है जिसकी संचालिका सदैव से ही बहने ही रही है। ये संस्था, इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो कई लोगों को अंदर में ये संशय उत्पन्न होता है कि कुमारी नाम से ये संस्था कहीं बहनों की ही तो नहीं है या सिर्फ बहनों के लिए तो नहीं है, लेकिन वास्तव में कुमारी नाम का अर्थ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये संस्था सदैव से ही बहनों के द्वारा संचालित की जाती है, लेकिन ये संस्था समस्त मानव जाति के लिए है, सभी के लिए है, हर वर्ग के लिए है, क्योंकि यहाँ कोई धर्म नहीं है, ये आध्यात्मिक से संपन्न है। आप सभी यहाँ पधारे हैं, निश्चित रूप से 5 दिन आप हमारे साथ होंगे और आप इस संस्था को, इस ईश्वरीय परिवार को गहरे से जानेंगे, समझेंगे और यहाँ के ज्ञान का, यहाँ के जो परमात्मा ने हमें राजयोग सिखाया है, इस राजयोग का लाभ लेंगे। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगी हमारे मुख्य अतिथि को, कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय संतोष दीदी जी विराजित हैं। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी परम आदरणीय अवतार भाई जी को, वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही साथ मैं सहृदय आमंत्रित करना चाहूंगी शिवलीला बहन जी को, वो भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आज के मुख्य अतिथि श्री राजीव पटेल जी, आपसे भी हमारा नम्र निवेदन है, जो विशेष इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं। आप चेयरपर्सन हैं इंदौर जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट के, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी राजयोगिनी सुमन बहन जी को, आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजयोगिनी नीलम बहन जी को, आप भी मंच पर आकर के अपना स्थान, अपना दिव्य स्थान ग्रहण करें। हमारा दिव्य मंच दिव्य अतिथियों से सुशोभित हो चुका है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम सभी परमात्मा की दिव्य याद में बैठते हैं, उनका आवाहन करते हैं और उनकी दिव्य स्मृति के साथ ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो 2 मिनट हम सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे और एक दिव्य गीत बजेगा, जिसके अर्थ को, जिसके भाव को अपने अंदर आत्मसात करने का संपूर्ण प्रयास हम सभी करेंगे।
ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान, ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
आज के कार्यक्रम की अब विधि पूर्वक शुरुआत करने के लिए मैं सर्वप्रथम अपने ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे मंच की शोभा को तिलक पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करें। हमारी परम श्रद्धे शिव स्वरूपा तपस्विनी, हमारे परम आदरणीय संतोष दीदी जी, जो समाज सेवा प्रभाग की चेयरपर्सन है, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजीव पटेल जी इंदौर से पधारे हुए हैं हमारे बीच में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे परम श्रद्धे आदरणीय अवतार भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल सर्विस विंग, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय शिवलीला दीदी जी, संचालिका गुलबर्गा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अपनी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय सुमन बहन जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आप चंडीगढ़ से हैं। हम सभी को आज राज्यों का अभ्यास कराने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं राजयोगिनी नीलम बहन जी। आप श्रीनगर गलवाल गढ़वाल चारधाम आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं अपने दिव्य मंच के लिए कहना चाहूंगी, नीले अंबर खूबसूरत सितारे, सच गई ज्ञान सरोवर की यह महफिल और बदल गए नजारे, क्योंकि मंच पर आज पधारे दिव्य फरिश्ते हमारे बीच। बहुत विशेष विभूतियां मौजूद हैं। हम सभी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपकी उपस्थिति, आपके दिव्य प्रकंपन हम सभी को श्रेष्ठ आत्मिक बल प्रदान कर रहे हैं। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में बहुत सुंदर नृत्य लेकर के पधार रहे हैं अमरावती कल्चर ग्रुप, जो विशेष गणपति सॉन्ग के लिए सॉन्ग लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं। गणेश वंदना जो करेंगे अपने नृत्य के माध्यम से। अश्मिता संगीत निकेतन और हमारे बीच में ये जो गणपति वंदना करने जा रहे हैं वो लक्षिता साची और सरगम बहन है। मैं चाहूंगी कि हम भी जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इन बच्चियों का उत्साहवर्धन करें। Yeah.
मनानी भरली ऊंधड़ नित्य रीति भावी चरणावर आने बालक सुमधुर हासे भावत सेवा हो सुरातुना ओंकार गणपति
पशुपति दुखपति छंदपति गंधपति
अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति दुरपति लीन निरंतर निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो
सुंदर बहुत अलौकिकता से संपन्न इन बच्चियों का नृत्य स्वागत के इस श्रृंखला को गति प्रदान करते हुए हमारे बीच में आ रहे हैं मधुर वाणी ग्रुप जो आपके दिल के जो अपने दिल के उद्गार अपने गीतों में पिरोकर सबके दिल तक पहुंचाते हैं हमारे परम आदरणीय सतीश भाई जी नितिन भाई बिथीन भाई गोविंद भाई जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी मंच पर आकर के अपने मधुर वाणी की मधुर झंकार से हमारे सभी अतिथि जनों का स्वागत और अभिनंदन करें।
ओम शांति। है मंदिर सजता मूरत से है मंदिर सजता मूरत से और अंबर ज्यू तारों से आज अरावली का मंच सजा है ऐसे समाज सेवक प्यारों से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें।
आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के जल फवारे हैं आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के जल फवारे हैं आप भगवान के मेहमान समाज सेवक पधारे हैं आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के जल फवारे हैं आप भगवान के मेहमान समाज सेवक पधारे हैं आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं अरावलियाचल में पलता बना आप महातीरथ है अरावलियाचल में पलता बना आप महातीरथ है यहाँ भगवान है आए यहाँ आया भागीरथ है अरुणाचल में पलता बना आबू महातीरथ है, यहाँ भगवान है आए यहाँ आया भागीरथ है। अचलगढ़ दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर से नजारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं। आप भगवान के मेहमान समाज सेवक पधारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में मंदिर सजता मूरत से और अंबर जूतारों से, है मंदिर सजता मूरत से और अंबर जूतारों से, सजा है अरावली का मन समाज सेवक प्यारों से। है मंदिर सजता मूरत से और अंबर जूतारों से, सजा है अरावली का मन समाज सेवक प्यारों से। आप आए अपने घर में, आप आए अपने घर में, प्रभु के बच्चे प्यारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं। आप भगवान के मेहमान समाज सेवक पधारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में बड़ी कल्याण भावना है, समृद्ध सशक्त समाज हो। बड़ी कल्याण भावना है, समृद्ध सशक्त समाज हो। पुनः अध्यात्म शक्ति से यहाँ पर राम राज हो। बड़ी कल्याण भावना है, समृद्ध सशक्त समाज हो। पुनः अध्यात्म शक्ति से यहाँ पर राम राज हो। एक ही राह के राही, एक से लक्ष्य हमारे है। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं। आप भगवान के मेहमान समाज सेवक पधारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं। आज तो ज्ञान सरोवर में खुशी के चले फवारे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप का। स्वागत के श्रृंखला को और सुशोभित करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं अपने सुंदर शब्दों के द्वारा अपना स्वागत वक्तव्य लेकर एक सहज और सफल व्यक्तित्व, गंभीरता और रमणीकता का अद्वितीय संगम परम आदरणीय हमारे अवतार भाई जी का व्यक्तित्व जितना सरल सहज है उतना ही गंभीरता से संपन्न है। भाई साहब हमारे समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप इस परमात्मा द्वारा स्थापित महायज्ञ के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप प्रबंधक हैं ब्रह्म कुमारीज के, सदस्य हैं मुख्यालय प्रबंधक कोऑर्डिनेटर कमिटी के, माउंट आबू संवाददाता हैं आप राजस्थान पत्रिका के, अध्यक्ष हैं सिरोही जिला पत्रकार संघ के, आप महामंत्री हैं राजस्थान पत्रकार परिषद के, आप महामंत्री हैं मुक्तिधाम सेवा समिति के, आप महामंत्री हैं आबू विकास एवं जन कल्याण समिति के, आप संरक्षक हैं सिरोही जिला राजस्थान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, पूर्व कोषाध्यक्ष जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, आप सदस्य हैं आबू पर्यावरण प्रतिरक्षा समिति के, आपको मूल्यनिष्ठ उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए दैनिक नवज्योति राजस्थान पत्रिका प्रशासन रोटरी एवं लॉयंस क्लब आदि संगठनों द्वारा 18 से अधिक प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर के आपको सम्मानित किया गया है। आप 1977 से तन मन धन से समर्पित होकर के आप इस ईश्वरीय सेवा में संलग्न है। आपके लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। लगते सामान्य पर खास हैं आप, जीता जागता उल्लास हैं आप, कोई अंधेरा ना रोक सके जिसे, वही ज्ञान सूर्य परमात्मा का पवित्र प्रकाश है आप, पवित्र प्रकाश है आप। परम आदरणीय अवतार भाई जी।
ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, आज इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय भ्राता रोटेरियन सरजीव जी पटेल साहब, आदरणीय सुमन बहन जी, आदरणीय शिव लीला बहन जी, आदरणीय नीलम बहन जी और आदरणीय अंकिता बहन जी तथा सभा में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों, इस बहुत ही पावन और सुंदर सभा में हम सब जिस उद्देश्य को लेकर के एकत्रित हुए हैं वो अपने आप में बड़ा गंभीर विषय तो है ही है, लेकिन साथ ही समसामरिक भी है। बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है कि इस विषय को लेकर के ही ये स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाता है कि निसंदेह ही पूर्व में समाज अपने आप में एक समृद्ध समाज रहा होगा, और जहां समृद्धि है उसमें तो स्वतः ही सशक्त होना निसंदेह ही है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जिसके आधार पर वो समृद्ध समाज एक अध्योपतनगामी बन करके और आज की जैसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए विवश हो गया है? ये अलग ही बात है कि वो समाज जिसे आज भी सोने की चिड़िया के रूप में संबोधित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, वो समाज किन परिस्थितियों को लेकर के आज की स्थिति में पहुंचा है, इस रसातल में पहुंचा है। उसका एक ही उत्तर हम सबके सामने होगा कि लंबे समय तक जो दिव्य संस्कृति इस समाज में थी और उस दिव्य संस्कृति के अनुरूप मनुष्य ने जीवन यापन किया है, क्योंकि समाज सोने की चिड़िया थी तो मनुष्य उस समाज की एक इकाई है, और उस इकाई के आधार पर मनुष्य ने ही उस समा सोने की चिड़िया का उपयोग और उपभोग किया, जिसे दैवी दुनिया, दैवी संस्कृति और दिव्य मानव के रूप में आज भी हम संबोधित करते हैं। इतिहास के पन्नों से अगर हम खेलने चले जाते हैं तो स्पष्ट रूप से ये विदित हो जाता है कि जब जिस तरह से, क्योंकि समाज में कुछ कुरीतियों का लंबे अवधि के बाद, पूरे आधा कल्प पूरा होने के बाद में कुरीतियों ने जन्म लिया, और उस कुरीतियों के आधार पर, विकारी प्रवृत्तियों के आधार पर मनुष्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका, और धीरे धीरे वो बुराइयां मनुष्य को या उस सामाजिक प्राणी को अपने शिकंजे में जकड़ती चली गई, और धीरे धीरे वो मनुष्य जो है उसका अध्योपतन होता हुआ और पूरी तरह से ही वो दुखों के संसार में प्रवेश कर गया। यही वजह है कि अब फिर से उस समाज को उस पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए फिर से आध्यात्म की आवश्यकता आन पड़ी है, और वो आध्यात्म जिसके लिए हम यहां पर इस सुंदर सभा में एकत्रित हुए हैं, और इस सभा में एकत्रित होकर के हम आने वाले 5 दिनों में उस नई पूर्ववत, नहीं तो कहेंगे लेकिन पूर्ववत उस संस्कृति का, जिस संस्कृति को हम दिव्य संस्कृति के रूप में सामाजिक तौर पर आज भी बखान करते चले आ रहे हैं, उस दिव्य संस्कृति का फिर से पुनरुत्थान करने के लिए यहां पर हमारा जो चिंतन होगा, मनन होगा, और जिस रूप से हम उस चिंतन मनन के आधार पर एक नया स्वरूप, एक नया सार हम सामने लेकर आएंगे, जो कि हमारे वर्तमान को तो सुखद करेगा ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भविष्य भी निश्चित तौर पर न केवल यहां पर उपस्थित सभी भाई बहनों का अपितु पूरे समाज का भविष्य उज्जवल होगा, और वो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा के ने जो है साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, श्रीमुख से जो उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं, उन वाक्यों को हम अपने जीवन में अंगीकृत करने के लिए यहां पर हम एक नई पृष्ठभूमि का बनाकर ले चलेंगे, जिसको जाकर के अपने जीवन में अंगीकृत करते हुए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हुए और अपने वर्तमान को सुखद बनाने के लिए नींव यहां से लेके जाएंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और शुभ भावनाएं हैं आप सबके लिए। इसके साथ साथ ही जो 3 दिन आने वाले 4 दिन के लिए यहां पर जो प्रातःकालीन सत्र होंगे, विशेष तौर पर राजयोग शिविर, उसके लिए हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध रहेगा कि उसमें आपकी उपस्थिति, पूर्ण रूप से आपकी उपस्थिति, आपकी सहभागिता उसमें अर्जित करने के लिए यहीं पर अभी से ही कृत संकल्प हो जाना। आप सभी भाई बहने यहां पधारे, इस महानतम जो कि पूरे संसार में एक अपने आप में एक अद्भुत स्थान है, उस स्थान पर आने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ आप सभी के लिए जो भी यहां पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उन सुविधाओं के साथ साथ आप इन ईश्वरीय महावाक्यों के स्मरण और उसके साथ साथ जो सहज राजयोग का अभ्यास करने के साथ ही यहां पर जो भी चर्चाएं होंगी, परिचर्चाएं होंगी, उन सभी चर्चाओं परिचर्चाओं में आप सभी अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से अर्जित करने के लिए पूर्ण रूप से आप संकल्पित होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। ओम शांति।
आदरणीय अवतार भाई जी का। हम सभी समाज सेवी, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि हम समाज सुधार के कार्य में अग्रसर है। तो इस कड़ी की शुरुआत निश्चित रूप से, जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज की शुरुआत कहाँ से होती है, वो पहली कड़ी कौन है, समाज कहाँ से बनता है? हमारे स्वयं से। जब हम श्रेष्ठ होंगे, हमारे अंदर आध्यात्म शक्ति होगी, आध्यात्म बल होगा, हमारे कर्तव्यों में वो बल शामिल होगा और उसका प्रभाव हमारे परिवार पर, परिवार से हमारे समाज पर, समाज से देश और देश से विश्व तक फैलेगा। आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ आपके अंदर जो शक्ति भरी जाएगी वो आध्यात्म शक्ति है, आध्यात्म बल है, जिस बल के आधार से आपके कर्म श्रेष्ठ होने हैं और उस कर्म के श्रेष्ठता से आपका समाज विश्व श्रेष्ठ होना है। तो बहुत बड़ी जवाबदारी आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर है। इस जवाबदारी को निभाने के लिए क्या हम सभी तैयार हैं? है? जो तैयार है वो हाथ उठाए। हाँ, बहुत सुंदर, और एक बार जोरदार अपने लिए ताली जरूर बजाएं। तो चले कुछ पंक्तियां दिल की गहराइयों से हमारे साथ बोले, और ना सिर्फ बोले बल्कि इसे बिल्कुल अपने भीतर में इसे समाते जाएं, क्योंकि यही पंक्तियां हैं, ये 5 दिन में आपका स्वरूप बन जाएगी। मेरे साथ कहेंगे, मैं समाज सेवी हूं। बोले सभी। आध्यात्मिक सेवाधारी हूं। तन मन से शक्तिशाली हूं। जो आसमान पर छा जाए सूरज की वो लाली हूं। सबके चेहरे पर चमके जो, मैं वो प्रेरणादायी खुशहाली हूं। थोड़ा मुस्कुरा कर कहे, मैं वो प्रेरणादायी खुशहाली हूं। बस ऐसे ही खुशहाली यहां भी आप महसूस कर ही रहे हैं, यहां से जब आप अपने स्थान पर जाएंगे वहां भी आप बहुत सुंदर इस अनुभूतियों में रहेंगे। अभी हम चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता की ओर, जो आज का कार्यक्रम का विषय है कि आध्यात्मता से कैसे हम अपने आप को संपूर्ण सशक्त बना सकते हैं। समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी आध्यात्म, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी शिवलीला बहन जी। आप पिछले 40 वर्षों से समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप गुलबर्गा अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर हैं। आपने भारत में अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में, आपने बहुत सारे कंपनीज में, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और दीदी जी शुरू से ही समाज की सेवा के प्रति हमेशा तत्पर रही हैं। इनके दिल के उद्गार में चंद पंक्तियों में आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगी। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे चमकेंगे, सूरज फिर से निकलेगा, रोशन जग हो जाएगा। विश्वास का एक दीपक लेकर चल, तो विश्वास का एक दीपक लेकर चल। आदरणीय शिवलीला दीदी जी।
ओम शांति। परम श्रद्धेय, परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी और आदरणीय मंच, पूर्णिमा की रात में आसमान में चमकते हुए सितारों के जैसे, धरती के तारे सितारे अपने तन मन धन से सेवा में लगे हुए आप सभी समाज सेवी भाई बहनों का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमन वंदन। ओम शांति। आदरणीय अवतार भाई जी सुना रहे थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, समृद्ध भारत था, सशक्त भारत था, सतयुग जिसे हम कहते थे, सोने के महल थे, पुष्पक विमान थे, दूध घी की नदियां बहती थी, न चोर थे न चोरी न ही पुलिस, न रोग था न रोगी न ही वैद्य, संपूर्ण स्वास्थ्य सबको था। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। इसी सत्य को ऐसे ही सतयुगी दुनिया बनाने के लिए वो प्रभु, वो परमपिता, वो ईश्वर बाबा शिव बाबा ने एक हस्ती को चुना 1937 में। वो हस्ती दादा लेखराज एक सुप्रसिद्ध डायमंड मर्चेंट थे, धनाढ्य, सात्विक, धार्मिक, आध्यात्मिक हस्ती थी। वो थे पिताश्री ब्रह्मा, जिनके माध्यम से वो परमपिता परमात्मा ने एक संगठन तैयार किया, इस संस्था की स्थापना की, एक परिवार बनाया जिसको हम ब्रह्मा कुमारी परिवार कहते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था कहते हैं। ये जो संगठन बना तो वो परमपिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान के आधार से, राजयोग मेडिटेशन ध्यान के आधार से इतने सशक्त बनाए, सक्षम बनाए। वो सक्षम सशक्त ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि को पाते 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 आज सारे विश्व में एक विशाल वृक्ष बन गया है। 11 लाख भाई बहने इस संस्था से जुड़े हैं, मैं जोर देकर के कह रही हूँ, 11 लाख भाई बहने इस संस्था से जुड़े हैं, सात्विकता सादगी को अपनाए हुए, आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को बनाए हुए, जो अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस उनके अंदर वृद्धि समृद्धि तो बढ़ेगी ही। आज जो हम अपने संपत्ति को लूटा रहे हैं, सिनेमा, सिगरेट, क्लब, पब और क्या क्या बातें हैं दुनिया में, वो फुजुल खर्चे से बच करके सात्विक जीवन, सरल जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ये जो समाज है, ये संगठन है, ये संस्थान है, ये समृद्ध सशक्त आध्यात्मिक परिवार है, जिस परिवार में आप सभी आए हैं, आप सबका हम पुनः इस समृद्ध सशक्त परिवार में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सुन रहे थे गीत में, ये आबू अब्बा का घर है, प्रभु पिता का घर है, बाप का घर स्व आपका घर है। आप कल से यहाँ रहे हुए हैं, कई आज भी आए हुए होंगे, तो यहाँ आकर आप जरूर अनुभव कर रहे होंगे कि ये अपना घर है, आपका घर है, ऐसा अनुभव हो रहा है आपको। तो 3 दिन आप यहाँ रहेंगे, जरूर अनुभव कीजिए आपका है। यहाँ जो प्रैक्टिकल में सशक्त समृद्ध आध्यात्मिक जीवी भाई बहने हैं, ये दादियां हैं, दीदियां हैं, बाबा हैं, शिव बाबा हैं, उनसे शक्तियां भर लीजिए, सशक्त हो जाइए, सदा के लिए समृद्ध सशक्त बन करके ही यहां से जाएंगे। आज ये दृढ़ संकल्प आप सभी जरूर कीजिए, करेंगे अपने लिए, अपने लिए। समृद्धि कोई संपत्ति नहीं, अगर संपत्ति होती तो आज जो धनाढ्य देश है, धनवान परिवार है, वो सब सुखी होते, ऊंची इमारतें तो बन रही हैं, परंतु चरित्र गिर रहा है, सुंदर मकान तो हम बना रहे हैं पर दिल में दरारें पड़ रही हैं, इनकम तो बढ़ रहा है पर प्यार घट रहा है, रास्ते तो विशाल हो रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे पर दिल मन संकुचित हो गया है। रास्ते में चलते किसका क्या हुआ, हम नहीं एक्सप्रेस हाईवे में चल रहे जी, नहीं है। एक फ्रेंच से एक पर्यटक अनेक देशों का भ्रमण करते करते भारत में आया, भारत के गांव में गया तो कुछ संशोधन कर रहा था, तो ऐसे वो पर्यटन करते करते भ्रमण करते करते गांव में भटकते भटकते रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गया, जंगल में चला गया। जब जंगल में गया, अंधेरा हो गया, तो उसको डर लगने लगा, डर लगने लगा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई भी नहीं है, क्या होगा आगे। वो भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा, अंधेरा ही अंधेरा। तब उसे कहीं दूर से एक रोशनी दिखाई दी, तब जान में जान आई। वो करोड़पति था, लेकिन जब रास्ता भटक गया तो कुछ काम में नहीं आता। कोई संपत्ति हमें कभी साथ छोड़ देता है, कभी हमेशा के लिए साथ नहीं देता। तो जब रोशनी दिखाई पड़ा तो उसके जान में जान आ गई, वो भागते हुए वहां पहुंचा। वो कुटिया थी, वहां एक माता थी बुजुर्ग, वो माता ने उसको देखा, विदेशी है, न भाषा जानते, न धर्म, न देश। उसने कहा आओ बच्चे आओ, उसको बिठाए, बाजू में बैठ करके उसको गरम गरम भोजन खिलाई, नीचे चटाई पर बैठ गया, वो कभी नहीं बैठा होगा। फिर उसको दूध पिलाई, फल खिलाई, फिर एक चटाई दी, आप सो जाओ आराम से, फिर सो गया। फिर सवेरे उठने के बाद उसने कहा नींद अच्छी हुई, तो बोला बहुत अच्छा हुआ। फिर उसको रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ चलते चलते वो माता कहती है, कभी भी अगर भूले भटके इस रास्ते पर आते हो तो मेरे घर जरूर आना, मैं तुमको गरम गरम खाना खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, फल दूंगी। न भाषा जानते, न देश जानते, न व्यक्ति को जानते हैं, तो वो अपने बुक में लिखता है कि सबसे बड़ी संपत्ति आपको देखनी हो तो भारत के गांव में देखो। तो ये है भारत की समृद्धि। तो समृद्धि का आधार क्या है, नींव क्या है, फाउंडेशन क्या है, वो है आध्यात्मिकता, वो है राजयोग। क्यों, हम सब जानते हैं जब तक हम मन को सशक्त नहीं बना सकते हैं तब तक हम समृद्धि को नहीं पा सकते हैं। तो मन को सशक्त बनाने के लिए हमें चाहिए मेडिटेशन, ध्यान, इसकी जरूरत हमें है। इस सभा में मैं निवेदन करती हूँ, कितने हैं जो रोज मेडिटेशन करते हैं, हाथ उठाइए, ध्यान करते हैं, क्लास के भाई बहने नहीं, देखिए इतने सारे बैठे हुए हैं, इसमें चार पांच हैं। तो जिस दिन से हमने इस आध्यात्मिकता को नेग्लेक्ट किया है, नकारा है, इस भारत के प्राचीन राजयोग के तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया है, तब से लेकर के समस्याएं बढ़ती गई, टेंशन बढ़ता गया, बीमारियां बढ़ती गई। क्यों? कहते हैं साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर साउंड माइंड होगा तो बॉडी साउंड होगी, स्वस्थ मन होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। जो जो दवाई की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। क्यों? दवाई दे रहे तन को, बीमार है मन। दवाई तन को दे रहे हैं, बीमार है मन। मन को दवाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हमारे लिए वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। लेकिन ऐसा टाइम आएगा। क्या टाइम आएगा? एक व्यक्ति था, हर बार यही कहता था कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो एक साधु ने क्या किया, उसको लेकर चला कब्रिस्तान। तो बोला, ये एक व्यक्ति था, इसने जीवन भर 18 घंटा काम किया, डॉक्टर था, पर 45 वर्ष में ही चला गया। हमेशा यही कहता था टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब उसके पास पूरा टाइम है, पूरा टाइम। 100 वर्ष जीने का था, वो कितने वर्ष में गया? 45 वर्ष में। तो 24 घंटा हम इस शरीर के लिए देते हैं, अगर एक घंटा, आधा घंटा अगर हम अपने मन को सशक्त बनाने के लिए, मन को चार्ज करने के लिए मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो जरूर हमारा जीवन सशक्त बनेगा, समृद्ध बनेगा। जब सब हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तब कौन याद आता है? तब आध्यात्मिक उस तरफ मुंह मोड़ते हैं या भगवान की तरफ। एक डॉक्टर के हाथ में माला थी ऑपरेशन थिएटर में, वो बेड पर सोया हुआ पेशेंट पूछता है, डॉक्टर आपके हाथ में तो चाकू कैंची होनी चाहिए, आपके हाथ में माला है। तो डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ तो माला मेरे लिए, ऑपरेशन फेल हुआ तो ये माला तेरे लिए। तो हमारी हालत भी यही है, जब सब हाथ छोड़ देते हैं, साथ छोड़ देते हैं, तब हमारा मन उस प्रभु के तरफ जाता है, तब तक नहीं। लेकिन पहले से ही अगर हम थोड़ा सा समय उस प्रभु प्रेम में लीन होने के लिए दें, अपने मनोबल को बढ़ा, अपने तन मन, अपने परिवार, अपने समाज, सब कुछ ठीक होगा। हम थोड़ा सा वक्त उस मेडिटेशन के लिए देंगे। वो एक गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसमें आगे कहा गया है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम ये देखते हैं हमको क्या मिल रहा है समाज से, लूटने में लगे हुए हैं, लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने क्या दिया है समाज को, हमने क्या दिया है? किसी के दुख दर्द में हमने भाग लिया, किसी के आंसू पोंछे, किसी गरीब की मदद की, किसी अनपढ़ को पढ़ाया, हमने कुछ किया। वो काउंट कीजिए, हमारा बैंक बैलेंस, पुण्य की पूंजी क्या है, वो आपको नजर आएगी। तो हमने क्या किया? तो इतनी शक्ति हमें लेनी है, कितनी? जो हम दूसरों के दुख दर्द को ले सके। तो हमको समाज सेवा करने के लिए पहले अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, सशक्त बनाना पड़ेगा। उसके लिए जरूर आपको वक्त निकालना होगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो गीत याद आता है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसमें भी आगे हैं। राह में आए जो दीन दुखी उसे गले लगाते चलो। एक दिया था, सूरज ने कहा उस दिए से कि मैं हूं जग को रोशनी देने के लिए, तुम क्यों जल रहे हो। मैं हूं जग को रोशनी देने के लिए तो दिया कहते हैं। क्या आप रात को बुलाएंगे तो आएंगे? आएंगे नहीं। तो जब अंधेरी रात होती है तब मैं रोशनी देता हूं, और मैं सबसे प्यारा हूं भगवान का। हर घर में, हर मंदिर में, हर दिन श्रद्धा से, भक्ति से दिया जलाते हैं, तो मेरे ऊपर भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, और मैं दुनिया को क्या देता हूं? रोशनी देता हूं। ऐसे ही जो व्यक्ति स्वयं सशक्त बनता है, समृद्ध बनता है, आज की अंधेरी नगरी में मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या क्या है दुनिया में, इसके दौर में, इसके होड़ में आज कुछ भी पॉजिटिविटी हमें नहीं मिल रही है। जो कुछ हम ले रहे वो सब नेगेटिव है। तो इसे बदलने के लिए आज दिया बनकर अंधेरी नगरी में यह संस्था कार्य कर रही है, और जरूर जग को रोशन करेगी, रोशनी देगी इस जग को, जरूर बदलेगी। तो आप सबसे हम आश करते हैं कि आप जरूर 3 दिन वक्त दीजिए। 3 दिन जो सुबह का सत्र होता है वो जरूर, क्योंकि सुबह क्या होती है, सुस्ती, तो सुबह जरूर जागिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, 6:30 बजे आकर यहाँ पर जरूर उस क्लास को अटेंड कीजिए। 3 दिन पूरा इसका लाभ लीजिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। नहीं तो हमारी समृद्धि, हमारी संपत्ति नष्ट होगी, लाश होगी। आज इतना हम सुन रहे, आज अभी ट्रेन में आ रहे थे, अपने स्थान पर भी सुन रहे थे, कल में एक पेपर में आया, एक डॉक्टर 23 लाख रुपए शेयर मार्केट में गंवाए। साइबर क्राइम कितने हो रहे, ऑनलाइन धोखाधड़ी कितनी हो रही है। मुझे लगता है यहाँ लूटने वाले तो नहीं आए होंगे, लुटाए हुए तो जरूर आए होंगे। कितनों ने लुटाया, कितनों ने लुटाया साइबर क्राइम में? देखिए किसने लुटाया, कोई अनपढ़ गंवार नहीं, सब पढ़े लिखे। क्यों? क्योंकि विवेक उस समय काम नहीं करता है। इसलिए हम कहते जरूर मेडिटेशन कीजिए, वो हमें बीच बीच में इशारा देता रहेगा वो भगवान। जरूर आप अनुभव कीजिए, मनोबल को बढ़ाइए, मन को सक्षम बनाइए, तब तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, तो समाज भी समृद्ध सशक्त बनेगा। उसकी नींव है आध्यात्मिकता, इसको जरूर आप अपनाइए। आप अपनाएंगे इसी आश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी परम आदरणीय दीदी ने इस विषय पर प्रकाश डाला है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। हम सभी, हमें ज्ञात है कि हम सब मुसाफिर हैं, और यहाँ पर हम सभी मुसाफिरी कर रहे आए हैं, जाना है, लेकिन क्या लेकर जाएंगे वो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, कर्म उसका निर्णय करते हैं। तो आज हम सभी ये श्रेष्ठ संकल्प ले लें कि आज के बाद से जो भी हम कर्म करें उसमें आध्यात्मिकता शामिल हो। आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी का ये अर्थ नहीं है कि हमने मंदिरों में घंटी बजा ली या हम भगवान के सामने खड़े होकर घंटों पूजा कर लिए, ये अध्यात्म नहीं है। हमारे कर्मों में अगर प्रेम है, हमारे कर्मों में अगर सच्चाई है, हमारे जीवन में ईमानदारी है, सबके लिए दया की भावना है, विनम्रता है, यही अध्यात्म है। बस इसी अध्यात्म को लेकर के हमें अपने जीवन में हर कर्म को करते जाना है और अपने साथ साथ हमें जगत का उद्धार करना है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को, हमारे परम आदरणीय सजीव पटेल जी। आप इंटरनेशनल ट्रेनर है JCI के, आप रोटरी क्लब इंदौर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, गुजराती समाज के विभिन्न समितियों से जुड़े हुए हैं, आप जूनियर चैम्बर्स ऑफ इंडिया तथा JCC के जोनल अध्यक्ष भी रहे हैं, आप उद्योगपति भी रहे हैं, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपके लिए कहना चाहूंगी कि कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, शर्त ये है कि जो घिसेगा वही चमकेगा, और आप आज हमारे बीच में हैं अपनी चमक को बिखेरते हुए। आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन हमारे समक्ष रखें।
ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष जी, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक और प्रेम भाई, आज के इस सम्मेलन में उपस्थित सभी समाज सेवी और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व जिन्हें परमात्मा ने शक्ति दी है कि अपने व्यक्तित्व को समाज के लिए समर्पित करें, मैं अपनी ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं कि अपनी शक्ति का, अपने तेज का सही सदुपयोग करने के लिए हम सब चिंतित भी है, चिंतन भी कर रहे हैं और एकत्रित भी हुए हैं। आज के इस जमावड़े का मुख्य केंद्र बिंदु है समृद्ध और सशक्त समाज। व्यक्ति को हमेशा यह सिखाया जाता है कि भूतकाल या बीता हुआ कल हमेशा समृद्ध ही रहा है, क्योंकि यदि उसे हम यह बता दें कि आज समृद्ध हैं, पहले समृद्ध नहीं थे, आने वाला समय समृद्ध नहीं है, तो समाज विघटन की ओर चला जाएगा। सोने की चिड़िया 5000 साल पहले भी नहीं दिखी थी और सोने की चिड़िया आने वाले 5000 साल में दिखने वाली नहीं है। देश सोने की चिड़िया का था तो बहुत सारे राक्षस भी तो थे, उन राक्षसों को के समय में भी यह सिखाया जाता था कि पहले पुराना जमाना आज से बेहतर था। समाज को समृद्ध करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सामने हमेशा चुनौती रहे और उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आप को इतने शक्तिशाली बना दें ताकि समाज स्वयं शक्तिशाली समाज के रूप में परिवर्तित हो जाए। यदि हम आज शक्तिशाली नहीं बने तो भविष्य समाप्त हो जाएगा। कमजोर लोगों के द्वारा कोई विकास नहीं होने वाला है, कमजोर लोगों के द्वारा कोई भविष्य का निर्माण नहीं होने वाला है। शक्तिशाली तो हमें आज बनना है, आने वाले कल में भी हम शक्तिशाली ही रहेंगे। बीते हुए कल में शक्तिशाली थे तो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, किंतु समस्या इस बात की है कि हम जितना विकास करते जाते हैं उतना स्वयं को संकुचित करते जाते हैं। डार्विन ने तो कहा था कि मनुष्य विकास का एक पर्यायवाची है, और डार्विन की जो थ्योरी थी, डार्विन के जो सिद्धांत थे, वह विकास की अवधारणा के साथ जुड़े हुए थे। किंतु जब व्यवहारिक रूप में हम पिछले 500 वर्षों का भी इतिहास देख ले, 500 वर्ष का इतिहास की सच्चाई मालूम ना हो तो कम से कम 100 साल के इतिहास का सच्चाई तो हमारे सामने है, प्रमाण के साथ में है। इन 100 वर्षों के इतिहास को हम नजर डालते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते गया, मनुष्य अपने आप को ऊंचा उठाते गया। कहां तो दो पत्थरों को घिसकर अग्नि पैदा करता था, कहां तो वो बैलगाड़ियों में बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, और कहां आज अपने आप को एक बड़े हवाई जहाज से एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाने लग गया। विकास होते गया, मनुष्य बढ़ते गया, किंतु जब उस बढ़ते हुए मनुष्य के उस बढ़ते हुए विकास में जब हम अंदर झांक कर देखते हैं तो मनुष्यता दिन पर दिन छोटी होने लगी, और उस समय हमें कल्पना होने लगी कि हम शायद समृद्धशाली नहीं हैं। उस समय हमें ऐसा महसूस होने लगा कि हम सशक्त नहीं हैं, क्योंकि मनुष्यता जब जब छोटी होती जाएगी तब तक डर की भावना उत्पन्न होना शुरू होगी, और यही डर हमें सशक्त होने से हमेशा, सशक्त होने की घोषणा करने से हमेशा रोकेगा। एक बारात जा रही थी, और जब बारात निकलने की शुरुआत हुई तो दूल्हे जब तैयार होने लगा तब पता लगा कि दूल्हे के का जो पजामा था, उस पजामा सलवार जो थी वो सलवार वो भूल गए हैं। उसके मित्रों में से एक मित्र ने कहा कि आप मेरा सलवार दे देता हूं, कम से कम बारात तो आगे निकलेगी। उसने अपनी सलवार उसने मित्र दूल्हे को दे दी। दूल्हा उस सलवार को पहन पर घोड़ी पर बैठा और बारात शुरू हुई। बारात थोड़ी दूर आगे गई, लोग देखने लगे, सड़क के आसपास के लोग। तब जिसने सलवार दी थी उसने उन लोगों को कहा कि इस दूल्हे ने जो सलवार पहनी है वो मेरी है। फिर उसके आसपास वालों ने कहा कि ऐसा क्या बोलता है, क्यों दूल्हे के बारे में ऐसा कहता है। फिर एक अगले चौराहे तक बारात पहुंची, लोग दूल्हे का स्वागत करने लगे। उस व्यक्ति जिसकी सलवार थी उसने फिर कहा, यह सलवार जो है आज मुझे पहनना थी, मैंने इस दूल्हे को दे दी। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये सलवार की बात क्यों उठा के चल रहा है। जब बारात लड़की दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो लोगों ने कहा कि बड़ा सुंदर दूल्हा है और अच्छे बड़े अच्छे परिवेश पहने वेशभूषा है उसकी। तब वापस उस आदमी ने कहा कि इसने सलवार किसकी पहनी है वो मैं नहीं बताऊंगा। अमूमन तौर पे समाज में हम विकसित इसलिए नहीं हो पाते हैं कि हम अपने मैं से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम अपने आप को कमजोर इसलिए साबित करते हैं कि हम अपने से परे हटके किसी को देख नहीं पाते हैं। और यहां पर अध्यात्म, जब हम अपने मैं की बात करते हैं वहां अध्यात्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब हम अपने मैं से बाहर निकलेंगे तब तो हमें पता चलेगी कि इस दुनिया में कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने के काम मैं आ सकता हूँ और कितना मैं सक्षम हूँ कि मैं दूसरों के हाथ पकड़कर उनको ऊपर उठा सकता हूँ। अध्यात्म, अभी अंकिता बहन जी ने जो कहा था कि अध्यात्म मंदिर में बैठकर घंटियां बजाने से या पूजा मूर्ति के सामने पूजा करने से नहीं है, बिल्कुल सही और सटीक वर्तमान समय की बात कही। अध्यात्म में हम यही मानते हैं कि कुछ रिचुअल्स कर लें, कुछ कर्म कांड कर लें, कुछ दिखावा कर लें और उसके आधार पर हम अध्यात्म की बात करेंगे। किंतु असली अध्यात्म तो वो है कि जब पड़ोसी हमारा भूखा है तो नींद हमको नहीं आनी चाहिए। यदि पड़ोस में कोई झगड़ा हुआ है तो अशांत वो नहीं होना चाहिए, अशांति हमें भी महसूस होना चाहिए। जब हम दूसरों के दर्द को, दूसरों की अशांति को महसूस करना प्रारंभ करेंगे, उस दिन हम वास्तव में समृद्ध हो जाएंगे, उस दिन हम वास्तव में अध्यात्म के साथ जुड़ जाएंगे और वही कुंजी अध्यात्म की हमें सक्षम बना देगी और हमें इस समाज को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में कामयाब होंगे। आप सब, आपके साथ मैं भी शामिल हूं, हम सब ने बचपन में जब गणित पढ़ी थी तो गणित के प्रश्नों में आता था कि एक व्यापारी ने 500 रुपए का माल लिया, ये दूसरे तीसरी क्लास में होता था। आठवीं क्लास तक गए तब पता लगी कि गणित के प्रश्न में वो 500 रुपए की जगह हजारों की बात आ गई। कॉलेज में जब हम गए तो महाविद्यालय में पढ़ा कि 1 लाख रुपए या 5 लाख से हम व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो अपने पैसों का नियोजन कैसे करेंगे। हम उस लाखों की बात जानकर अपने आप को शिक्षित करने में कामयाब हुए थे। किंतु आज जब पेपरों में पढ़ते हैं, आज जब हम किसी इन्वेस्टमेंट समिट में जब के सूचनाएं पढ़ते हैं या इन्वेस्टमेंट समिट की जब जानकारी लेते हैं, तब बताया जाता है कि हमारे इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद में इतने लाखों करोड़ का व्यवसाय के एमओयू हो गए। जो व्यक्ति घोषणा करता है उसको ये भी नहीं मालूम कि लाखों करोड़ों में कितने शून्य आते हैं। कहां हम 4 शून्य 5 शून्य 6 शून्य को समझकर अपने आप को जीवन में सार्थक करने के लिए निकले हैं और कहां हम सुनते हैं कि लाखों करोड़ों, 6 शून्य लाख के और 8 शून्य करोड़ के दोनों को इकट्ठा करने की गिनती करने का भी हमें, हमारे पास समय नहीं है। और इसी शून्यों की गिनती करने में हम अपने आप को गरीब मान लेते हैं, हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं और उस दूसरों की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। शून्यों की चिंताएं करना बंद करें तो लोग अपने आप नजदीक आते जाएंगे। पिछले 6 महीने से एक व्यक्ति, एक युवक और एक युवती अपने जीवन के उत्सव, शादी के उत्सव के लिए व्यस्त हैं। कितने शून्यों उसके पीछे खर्च हो गए हैं ये किसी को नहीं मालूम है और सारे लोगों ने कितने शून्यों का सेकंड उसमें जोड़कर कितना समय बर्बाद किया हो उसकी जानकारी लेने में, उससे न समाज का भला हुआ, न व्यक्तित्व का भला हुआ, न मनुष्यता का भला हुआ। किंतु बावजूद उसके हम उस दो व्यक्तियों के मिलन का, हम उसके शून्यों के बारे में, खर्च के, समय के, लोगों की संख्याओं के बारे में और आयोजनों की संख्याओं के शून्यों के बारे में, कितने शून्य पीछे लगे हैं उसके बारे में चिंतित होने लगे। इतनी चिंता हमने अपने ऊपर कर ली होती तो हर व्यक्ति सक्षम, सशक्त और समृद्ध हो जाता। हम इस बात की हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें अपने आप को सक्षम करना है, किंतु उससे पहले हम दूसरों को सक्षम होने से अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं। ये व्यक्ति इतना कमाता है, मैं भी उतना कमाऊंगा। ये व्यक्ति इतना ऊपर उठा है, मैं भी उतना ऊपर उठूंगा। क्योंकि हमारी जिंदगी दूसरों के साथ तुलना करने में चली जाती है, जिसे अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा फ्रेज दिया, आइडियल हीरो। मेरा हीरो ये रहेगा, मेरा हीरो मैं नहीं रहूंगा, मेरा हीरो तो शाहरुख खान आइडियल है, मैं शाहरुख खान जैसा सुंदर, शाहरुख खान जैसा समृद्धि इकट्ठी करूंगा। जब व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा नहीं होगा तो वो दूसरों के आइडियल हीरो बनने के सपने क्यों देख रहा है? उसे यह नहीं मालूम कि शाहरुख खान ने कितनी परेशानियां झेली है, कितने दिन वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, बंबई के प्लेटफॉर्म पर भूखा घूमता रहा है। हम दूसरों की तुलना करके स्वयं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। इसलिए मनुष्य जहां जन्म लिया था वहां से 4 कदम बढ़कर उम्र बढ़ाता है और 6 कदम आगे बढ़कर वहीं के वहीं हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान किसी दूसरे को आइडियल हीरो मानकर उससे तुलना करके वो भी वहीं के वहीं रहता है। और हम जब तुलना करते हैं तब विकास मान लेते हैं कि कितना विकास हो गया। एक घुड़सवार था, घुड़सवार अपने गंतव्य स्थान के लिए अपने वहां से निकला। जब वो आधे रास्ते तक पहुंचा तो एक आकाशवाणी हुई, ठहरो, रास्ते में जो पत्थर आपको दिख रहे हैं ये सारे पत्थर उठा सकते हो तो उठा लीजिए, कल सुबह बहुत आश्चर्य होगा। उस घुड़सवार ने अपने घोड़े से उतर कर सारे पत्थर जितने बीन सकता था उतने बीने, जितने झोली में आ सकते थे उतने सारे पत्थरों से झोली भर ली और अपने गंतव्य पे निकल गया। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो पहली किरण जब उसने उसके उस पर पड़ी सामान पर, तो उसने देखा कि जिन पत्थरों, काले पत्थरों को मैंने एकत्रित किया था वो तो सब हीरे बन चुके हैं, वो हीरे हैं। रात के अंधेरे में इन हीरों को मैंने काले पत्थर समझा था। उसको अफसोस, सबसे पहले तो अफसोस इसी बात का हुआ कि मैं एक झोला भर के ही पत्थर क्यों उठा पाया, मैं सारे पत्थर क्यों नहीं उठा पाया। फिर उसको खुशी हुई कि मेरे पास इतने वो है। जब भी हमारे पास समृद्धि आती है तो अफसोस पहले होता है कि और समृद्धि क्यों नहीं आई, और उस चक्कर में, अफसोस के चक्कर में हम अपने आप को कमजोर, असहाय मानकर चल लेते हैं। इसलिए हर वक्त, हर समय हम तलाश करते रहते हैं कि हम समृद्ध बने, सशक्त बने, और उसके लिए हम कुछ प्रयास करें। आपके पास 3 ऐसी शक्तियां हैं जो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने वाली है, वह है सत्य, प्रेम और दया। जब तक हम सत्य, प्रेम और दया के साथ रहेंगे तो हम अध्यात्म की तरफ चले जाएंगे। और आप सबके दिल में जो शिव तत्व बैठा हुआ उसको मैं प्रणाम करते हुए मैं इस उम्मीद के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपके दिल में प्रेम, सत्य और दया के भाव हमेशा जगते रहे, ताकि उस अध्यात्म की तरफ आप निसंकोच और निसंदेह रूप से आगे बढ़ते रहे। इस दो पंक्ति के साथ में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आज हृदय और सिंधु में उठा है ज्वार, तूफानों की ओर मोड़ दे नाविक निज पतवार। मैं उम्मीद करता हूं कि समाज के इस क्षण होते हुए क्षरण समय में हम अपने आप को सक्षम और समृद्ध बनाकर इस समाज को भविष्य के लिए एक आशा का संचार कर बनाने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह और विश्वास के लिए। मैं अनुरोध करता हूं राकेश बामोरिया जी से कि वो इंदौर जोन की तरफ से हमारे आज की राजयोगिनी जी संतोष दीदी को एक स्मृति चिन्ह देकर हम इंदौर की समस्त जनता की तरफ से, इंदौर शहर इस भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, हमारे ऐसे ही साफ हृदय से वाले शहर से हम संतोष दीदी जी को एक स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करना चाहेंगे। राकेश जी आप चिन्ह। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सजीव भाई जी का, आपने बहुत ही अनुभव युक्त वक्तव्य हमारे बीच में रखा। निश्चित रूप से आप जो कह रहे थे वो आपके जीवन में समाया हुआ है। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई थी कि जब भौतिकता के बारे में बात हो रही थी कि कितने भी शून्य आगे लगा लो, लेकिन जो अंदर की शांति है, खुशी है, आनंद है, वो उन शून्यों में नहीं है। किसी ने कहा है, दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में बहुत कमाया, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करूं दोस्तों, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। विनाशी चीजें कितना ही एकत्र कर ले, लेकिन साथ अविनाशी वस्तु ही जाने वाली है, और वो अविनाशी चीजें, वो अविनाशी वस्तु है कि हमने उन विनाशी चीजों से कितना अविनाशी धन कमाया। धन मेरे पास है, स्वस्थ शरीर मेरे पास है, एक अच्छा दिमाग मेरे पास है, मैं इस दिमाग से, मैं अच्छे शरीर से, अपने धन से कितने लोगों को सुख दे पा रहा हूँ, कितने ही जीवन का कल्याण कर पा रहा हूँ। ये दुआएं, यही हमारे अविनाशी धन है जो सदैव इस जीवन में भी हमारे कार्य आएगी, काम आएगी, और भविष्य में भी जो हमारे साथ चलनी है। हमें परमात्मा ने यही सिखाया है, विनाशी धन के साथ साथ हमें अपने अविनाशी धन का भी संपूर्ण ध्यान रखना है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी सुमन बहन जी को। आप पिछले 37 वर्षों से समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप रीजनल कोऑर्डिनेटर सोशल विंग की हैं चंडीगढ़ से। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपने देश विदेश में अपनी सेवाएं दी हुई हैं। आपके अंदर एक जज्बा है न हार मानने का, कैसी भी चुनौती हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन लगन है कि जीत कर दिखाना है, और यही संदेश आप दूसरों को भी देती हैं। आपके लिए कहना चाहूंगी कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। आदरणीय सुमन बहन जी,
ओम शांति। बहुत ठंडा ठंडा बोला है। ओम शांति, एक बार फिर से ओम शांति। थोड़ा सा सभी, हमें मालूम है कि आप थके हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट बैठेंगे तो आप यहाँ जो आप सबको शुभकामनाएं, आपका स्वागत हो रहा है, आप उसको रिसीव कर सकेंगे। अभी हम सभी सुन रहे थे हमारा सम्माननीय मंच और हमारे आदरणीय संतोष दीदी जी हमारे सामने, हमारे पास विराजमान हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना दीदी जी के लिए भी रखते हैं, और आप सबके लिए भी शुभकामना रखते हैं। लेकिन एक बात आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप ज्ञान सरोवर के गेट पे आए, जहाँ लिखा हुआ है एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, आपका किसी ने स्वागत किया वहां पर? किसी ने किया? हाथ खड़ा करेंगे? किसी ने नहीं किया? किया तो होगा, लेकिन शायद आप सबने महसूस अभी करेंगे, गेट पे आपका तीन बहनों ने स्वागत किया था, सुख शांति और पवित्रता। किया था या नहीं? आते ही गेट पे आपको बड़ा सुख का अनुभव हुआ, पवित्रता का अनुभव हुआ और शांति का अनुभव हुआ। हुआ या नहीं? हुआ या नहीं? ठंडे से बोल रहे हैं, ठंडा ठंडा हुआ। हम सशक्त समाज और समृद्ध समाज की बात कर रहे हैं। हम बहुत दूर दूर से चल के आए हैं, अपना समय धन लगाकर आए हैं। मेरी यही शुभकामना है आप सब से कि आप इन तीन दिनों को, चार दिनों को पूरा यूटिलाइज कीजिए। हम कोई भी मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसका मूल तो मूल, लेकिन सूद समेत हम इसको यूज करेंगे। तो यही काम आप यहाँ तीन चार दिन में कीजिए कि जो आपने समय लगाया है, दिया है, उस समय को पूरा यूटिलाइज कीजिए। आप समाज सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं बाहर, लेकिन ये चार दिन आपके अपने हैं। आप यहाँ अपने लिए जिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए सुनिए। यही मेरी शुभकामना आप सबके लिए कि अपने लिए जिए यहाँ पर, अपने लिए सोचें और अपने लिए सुने। क्योंकि बाहर तो आप सभी सेवा करते हैं, हम सबने देखा है, सुना है, कोरोना काल में भी और अभी भी आप सभी समाज से भी भाई बहने बहुत सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते करते हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आप आए हैं चार्ज होने के लिए, यहाँ आपका तन भी, मन भी और रूह भी चार्ज होगी, तीनों ही चार्ज होंगे। क्योंकि रोज आप सुनेंगे, सुबह से लेकर के दोपहर और शाम को आप सुनेंगे आत्मिक बात और साथ में आध्यात्मिक बात सुनेंगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, हम सभी समाज सेवा करते हैं। एक बच्चा, उसको बहुत उमंग आया, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा, पूरे विश्व के लिए काम करूंगा। करते करते कुछ साल बीत गए, विश्व नहीं बदला तो सोचा देश को बदल लेता हूँ, और कुछ साल बीते तो देश नहीं बदला, सोचा अपने स्टेट को बदल लेता हूँ, स्टेट भी नहीं बदला, और साल बीत गए, सोचा अपने शहर को बदल लेता हूँ, अपने गांव को बदल लेता हूँ, अपने घर को बदल लेता हूँ, परिवार को बदल लेता हूँ, कुछ नहीं बदला। अंत में जब वो मृत्यु शैया के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है, उस समय समझ आई, काश अगर मैं अपने आप को बदल लेता तो मैं पूरे विश्व को बदल लेता। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, अपने परिवर्तन से ही हम दूसरे का परिवर्तन कर सकते हैं, अपना परिवर्तन नहीं। आज हम बच्चों के सामने आइडियल दूसरों को देते हैं, भगत सिंह, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, ना हमने देखा होगा, ना आपने देखा होगा, ना महात्मा गांधी जी को और ना ही भगत सिंह जी को, ना ही मदर टेरेसा को, लेकिन आज हम अपने बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के आगे हम आइडियल बने, हम ऐसा व्यक्तित्व बनाए अपना कि लोग हमारा उदाहरण दें, हमें समझें कि हाँ ऐसा हमें बनना है। भाई साहब कह रहे थे अभी कि हम मैं नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर पंजाबी में किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मुझे बहुत अच्छी पंजाबी तो नहीं बोलनी आती लेकिन कोशिश करती हूँ, बहुत सुंदर बात कही है। एक स्कूल इदा दा वेख्या, इदा दा वेख्या में जिते लगदे ना ती कोई फीस सी, जदों अंदर जाके वेख्या में ना नजारा ही कुछ और सी, एक अचंभे सी उत्थे लगदे बैठे सी पर शीश उत्थे ना था कोई। जदों मैं पूछिए कि ये क्या क्या है, पता चलिया कि इत्थे ता शीश नहीं, शीश दी ही फीस देनी पैंदी है। तो तो भाई बहनों ये कि ऐसा स्कूल है ये कि यहाँ पर फीस की ही फीस लगती है, यहाँ आपसे और कोई कुछ नहीं लेगा, सिर्फ फीस माना अहम भाव जो भाई साहब ने कहा मैं, हमें उस मैं को छोड़ना पड़ेगा। जब तक इस अहम भाव को हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम समाज सेवा, हमारी समाज सेवा सार्थक नहीं हो सकती है। जहाँ समाज सेवक का अर्थ ही है सेवक माना दूसरों के अंडर। मिलिट्री में भी कहा जाता है कि आपको कोई थॉट नहीं करना, अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो कमांडर कहे वही करना है। तो समाज सेवा में हम सरेंडर होते हैं, जो दुनिया में दुख दर्द है उसी के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं। मैं एक नारा आप सबसे लगवाना चाहती हूँ, सिर्फ इतना है कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। आप सभी बोलेंगे तो एक बार हाथ ऊपर करके, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, मैं अपने आप को बदलूंगा तो जग जरूर बदलेगा। मेरी शुभकामनाएं ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाले सभी भाई बहनों के लिए, और आप सभी दूर दूर से आए हैं, आप सभी के लिए मेरी दिली है शुभ भावना है कि आप अपना टाइम पैसा लगा कर आए हैं, आप उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए और इतना सशक्त होके जाइए कि वहां जाकर जिस भी आप शहर से, स्टेट से आए हैं, देश से आए हैं, आप वहां जाकर के इतनी अच्छी सेवा कीजिए कि जो भाई साहब ने कहा अहम भाव, जो हमारा बहुत पुराना एक नारा था या एक कबीर जी ने कहा था बहुत अच्छी बात, नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज हम क्या कहते हैं, नेकी कर जेब में डाल, ताकि दूसरों को हम दिखाते रहें कि हमने क्या किया। जो भाई साहब ने कहा, हमारी शिवलीला दीदी ने कहा कि हम सेवा करते हैं, सेवा बाद में करते हैं, मीडिया वालों को पहले बुलाते हैं, हम ये सब छोड़ करके ऐसी सेवा करें, गुप्त सेवा करें, जिससे ये संसार बदले, ये दुनिया बदले। ये दुनिया बदलेगी जरूर, क्योंकि इतने सारे भाई बहन लगे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 100 बाल ब्रह्मचारी मिल जाए मैं दुनिया का नक्शा बदल दूंगा, चेंज कर दूंगा दुनिया। विवेकानंद जी को 100 बाल ब्रह्मचारी नहीं मिले, लेकिन हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ये विश्व परिवर्तन का बीड़ा उठाया, उनको आज 100 नहीं कई लाखों बाल ब्रह्मचारी मिले हैं, और ये दुनिया बदल करके ही रहेगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। ये समाज फिर से समृद्ध समाज और सशक्त समाज बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगी। इन्हीं अपने शब्दों के साथ आप सबको फिर से दिल से शुभ भावना देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमन दीदी जी का। निश्चित रूप से हम सभी मिलकर के एक समृद्ध और सशक्त समाज की स्थापना करेंगे, लेकिन खुद को सशक्त बनाने के लिए, अपने भीतर गुणों को भरने के लिए, भीतर समृद्धता लाने के लिए आत्मबल चाहिए, आत्मशक्ति चाहिए। और ये आत्मबल, आत्मशक्ति एक परमपिता परमात्मा के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, प्रभु, सदगुरु, किसी भी नाम से हम उन्हें पुकारें, लेकिन वो है एक परम सत्ता। उस परमात्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी यहाँ प्राप्त करेंगे। ईश्वर को जानने से पहले स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जैसा भाई साहब ने कहा था कि मैं को हटाना है, वास्तव में हम मैं को हटाते नहीं हैं, मैं को बदल देते। जहां मैं पहला देह में रहकर हम कहते थे, देहभान में रहकर कहते थे, वहां हमने आत्मिक स्मृति में स्वयं को स्थित कर दिया, और उस स्मृति में रहकर हम मैं शब्द का यूज करते हैं। मैं एक बहुत शांत, पवित्र, शुद्ध आत्मा हूँ।
और जहाँ ये शुद्धता होती है मैंपन की, वहाँ स्वतः ही आत्मा में बल आता है। जब मैं का पता चला तो मेरा कौन है उसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। मेरा ये घर नहीं, ये संसार नहीं, लेकिन वास्तव में मेरा वो एक परमपिता परमात्मा है। और जब उस मेरे के साथ हमारा कनेक्शन होता, इसी को राजयोग कहते। इस राजयोग की बहुत सुंदर अनुभूति कराने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी परमादरणीय नीलम बहन जी को। आप श्रीनगर गढ़वाल से हैं, उत्तराखंड चार धाम। आप 24 सेवा केंद्र संभाल रहे हैं। आपने पिछले 31 साल से समर्पित होकर के देश में विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आप सभी के लिए यही संदेश देती है, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी हो तो घर में मथुरा काशी है, तो घर में मथुरा काशी है। नीलम बहन जी,
ओम शांति। आज के सम्मानित मंच पर विराजमान हमारी परम श्रद्धेया, परम आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी, अध्यक्षा समाज सेवा प्रभाग माउंट आबू, मुख्य अतिथि महोदय रोटेरियन श्री सरजीव पटेल जी, अध्यक्ष इंदौर जूनियर चैम्बर चैरिटेबल ट्रस्ट, एवं मुख्य वक्ता के रूप में हमारी आदरणीय राजयोगिनी शिवलीला दीदी जी गुलबर्गा, आदरणीय भ्राता राजयोगी अवतार भाई साहब, राष्ट्रीय संयोजक समाज सेवा प्रभाग माउंट आबू, तथा हमारी अति स्नेही ब्रह्मा कुमारी बहने, ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी चंडीगढ़, एवं ब्रह्मा कुमारी अंकिता बहन जी अजमेर, तथा सभा में उपस्थित आप सभी हमारे परम आदरणीय समाज सेवी एवं भाई बहने। समृद्ध एवं सशक्त समाज की कुंजी है अध्यात्म, और हम सब जानते हैं और हम पूर्व वक्ताओं से सुन भी रहे हैं कि हम स्वयं बदलेंगे, स्वयं के विचारों पर जब ध्यान देंगे तभी हम समाज को भी सशक्त और समृद्ध बना सकेंगे। मन के सशक्तिकरण के लिए ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसके आधार से ही हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्योंकि राजयोग के द्वारा जो हम आत्म अनुभूति का अनुभव करते हैं, आत्म अनुभूति से ही हम परमात्म अनुभूति कर सकते हैं। हमारी आत्मा को जो सर्व शक्तियों का स्रोत है परमपिता परमात्मा शिव, उनसे ही हमको शक्ति प्राप्त होगी। तो आइए हम एक छोटा सा अभ्यास आज राजयोग का प्रारंभ करेंगे। सभी भाई बहनें थोड़ा अलर्ट होकर बैठें और स्वयं के मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अपना ध्यान अपने भ्रकुटी के मध्य जहां हम तिलक लगाते हैं वहां लेकर आएंगे। देखिए स्वयं को कि मैं एक बहुत शक्तिशाली चमकते हुए सितारे के रूप में इस देह को चलाने वाली शुद्ध आत्मा हूं। मैं अपने मन की मालिक हूं। सर्व कर्मेंद्रियों की राजा हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। प्रेम स्वरूप हूँ। मैं इस सृष्टि पर, इस रंग मंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। अब मैं आत्मा अपने परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परमात्मा पिता शिव के सानिध्य का अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा पिता शिव ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, परम धाम निवासी परम पिता परम आत्मा से मैं आत्मा शांति की किरणें लेकर स्वयं को बहुत शांत महसूस कर रही हूँ। मेरे विचारों में असीम शांति है, शांति मुझ आत्मा का निजी स्वभाव है। मैं बहुत शांत हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
हम सभी ने कुछ मिनटों के लिए राजयोग का अभ्यास किया। मुझे लगता है कि हम सभी ने बहुत गहरी शांति की अनुभूति की है, अनुभव किया। दो मिनट में हमने स्वयं को कितना शांत कर लिया। अगर सोचें, अगर सारे दिन भर में हमारा ऐसा ही चिंतन चले, ऐसा ही हमारे मन के विचार शुद्ध और शांत रहे, तो हमारा जीवन कितना ना आनंदमय, कितना ना खुशनुमा हो जाएगा। इसी आनंद और खुशी के लिए ही परमात्मा ने आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि निश्चित रूप से आप भगवान को बहुत प्यारे हो। ईश्वर की नजर आप पर थी, इसलिए परमात्मा ने आपको यहाँ बुलाया। ना सिर्फ भारत से बल्कि नेपाल से भी हमारे भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नेपाल से आए हुए समस्त समाज सेवी भाई बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नेपाल की धरनी में हमारा जाना हुआ था, बहुत विशेषता से संपन्न है वो धरा। वहां पर अद्भुत प्रेम नजर आया और वहां रहने वाले सभी के अंदर बहुत सेवा भावना है। तो यूं तो कहें, नेपाल की धरनी में आध्यात्म शक्ति तो पहले से ही विद्यमान है, और वही आध्यात्म शक्ति को लेकर के आप सभी यहाँ पधारे हैं। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। अब चलते हैं हमारे अध्यक्षीय भाषण की ओर। हमारे बीच में मौजूद है एक ऐसी हस्ती जिनको कहे कि जिनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल है, एक आदर्श है। ये ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में मौजूद है कि जिनकी ऊर्जा, जिनके प्रकंपन पूरे विश्व में निरंतर फैलती रहती है। एक ऐसा जीवन जिसने अपने जीवन का एक एक पल,
एक एक समय एक एक श्वास मानव सेवा में आध्यात्म सेवा में गुजार दिया। अद्भुत ओज अद्भुत शक्ति अद्भुत ऊर्जा से संपन्न हमारी परम श्रद्धे परम आदरणीय ममतामयी हमारे राजयोगिनी संतोष दीदी जी हमारे बीच में मौजूद है। दीदी जी का व्यक्तित्व बहुत गहरा है, वटवृक्ष के समान दीदी जी है, कहकर नहीं लेकिन अपने कर्तव्यों से अपने कर्म से इन्होंने हजारों जिंदगी को सुधार दिया। दीदी जी हमारी जैसी कितनी ही बहनों का जीवन निर्माण करने के निमित्त बनी हुई है। आप ज्वाइंट चीफ है ब्रह्म कुमारीज की, जोनल चीफ है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की, आप चेयरपर्सन है सोशल विंग की, आपने अपना जीवन मानवता के लिए समर्पित किया है। आप जहां भी जाते हैं अपनी पवित्रता की शक्ति और ऑरा फैलाते रहते हैं। आपके जीवन से पूरा जग उजियारा होता है। मैं आपके लिए कहना चाहूंगी, आपने अपने नाम को अपने स्वरूप में उतारा है। आदरणीय दीदी जी का नाम संतोष दीदी है और जीवन भी इनका ऐसा ही संतोष नुमा है, संतुष्ट मणि आत्मा है और इनके सानिध्य में जो जाता है वो स्वयं भी संतोषी बन जाता है। आपने अपने नाम को अपने स्वरूप में उतारा है, सबको परमात्मा प्रेम शक्ति देकर स्वयं में परमात्मा का दर्शन कराया है। आप जैसी दिव्य विभूतियां बहुत कम है संसार में, जिनसे सदैव हमने आध्यात्म ऊर्जा को पाया है, जिनसे सदैव हमने आध्यात्म ऊर्जा को पाया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी परम श्रद्धे दीदी जी से कि आप अपने आशीर्वचन हम सबके समक्ष रखें। जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी परम आदरणीय दीदी जी हमारे मौजूद हैं।
ओम शांति। आप सभी का अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आप सभी समाज सेवी भाई बहनों को देख करके हमें बहुत बहुत खुशी है। इतने भाई बहने जो समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा के साथ साथ अगर आध्यात्मिकता को जोड़ देवे तो मैं समझती हूँ भारत स्वर्ग बनने में बिल्कुल देर नहीं करे। इस धरा के ऊपर स्वर्ग आने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और राजयोग के द्वारा जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो हमारा जीवन सुखमय शांतिमय पवित्रमय बन जाता है, हमारे द्वारा अनेकों को उसका फायदा मिलता है। और यहाँ जो खास इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो खास पाठ पक्का कराया जाता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख करके और करें, तो जब हम सदैव अपने कर्मों के ऊपर ध्यान रखते हैं, हम अकेले नहीं चलते इस जीवन में, हमारे पीछे बहुत बड़ी क्यू चलती है, हमें फॉलो करने वाले बहुत होते हैं। इसीलिए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। वैसे तो हर एक मानव यही कहता है और चाहता है। अभी भी हम लोगों ने जो भी सभी के कितने सुंदर सुंदर विचार सुने, सार तो उसका यही था, स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व का परिवर्तन किया जाए। और मैं समझती हूँ हर एक व्यक्ति अपना परिवर्तन चाहता है। और अभी जब आप ऐसे माहौल में बैठे हैं तो जरूर अंदर में ये आता है कि नहीं, हम अपने जीवन को ऐसा ऊंचा ऐसा श्रेष्ठ बनाए जो हम औरों के लिए आईना बन जावे, और भी हमारे जीवन को देख करके अपने जीवन को परिवर्तन करें। परंतु होता क्या है, जब ऐसे श्रेष्ठ संग में आते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे विचार मन में आते हैं और ये पक्का करते हैं कि अभी हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरी है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, उसको हम जरूर उसके ऊपर जीत पाएंगे, उसके ऊपर विजय पाएंगे। अपना थोड़ा समय तो हम जरूर स्व कल्याण के लिए देंगे, ऐसा संकल्प करते हैं। परंतु सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होगा, आप जो संकल्प करते हैं वो दृढ़ संकल्प कीजिए। दृढ़ संकल्प करने से ही आपके अंदर वो आत्मबल आएगा, दृढ़ संकल्प करने से ही आप में हिम्मत आएगी और हम अपने लिए स्व कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सकेंगे। दृढ़ता को छोड़ देते हैं, सिर्फ संकल्प रखते हैं तो क्या होता है, जब अच्छा संग मिलता है तो अच्छे विचार आते हैं, जब साधारण संग में जाते हैं तो साधारण विचार आते हैं। तो हमारी जो एम है, हमारे को खुद को परिवर्तन करने की, वो एम जो है वो भूल जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप आए हैं तीर्थ यात्रा के ऊपर। तो जब तीर्थ पर जाते हैं तो कोई ना कोई प्रतिज्ञा करके आते हैं। तो इसीलिए आप सभी जो भी समाज सेवा करने वाले हैं, बहुत अच्छी समाज सेवा करते हैं, इसीलिए तो समाज टिका हुआ है, नहीं तो कैसा टिके। तो जो भी समाज सेवा करने वाले हैं, आप परमात्मा के साथ ये प्रतिज्ञा करो कि हम कम से कम सारे दिन में एक घंटा भी सुबह चिंतन, प्रभु चिंतन और विश्व कल्याण के लिए दें। स्थूल सेवा तो जरूर कीजिए, परंतु उसके साथ ये भी बहुत बड़ी सेवा है और ये आप मनसा के द्वारा कर सकते हैं। आप जितना जितना अपना मन परमात्मा के साथ लगाएंगे, उतना उतना वो सर्वशक्तिवान से आपको शक्ति मिलती जाएगी और जिस शक्ति के, जिस शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगी। तो ये जो दुनिया में इतनी अशांति बढ़ गई है, दुख बढ़ गया है, उनको शांति की एक शीतलता की लहर मिलेगी, समाज शांत होगा, सारा विश्व शांत हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी हम प्रतिज्ञा करते हैं या संकल्प लेते हैं, संकल्प लेने के बाद वो उसकी प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को घड़ी घड़ी जब रिवाइज करते हैं तो रियलाइजेशन करने की शक्ति हमारे अंदर आती है। और जब रियलाइज कर लेते हैं, हम अपने को महसूस कर लेते हैं, तो महसूस करने के बाद स्वयं को परिवर्तन करना ये बहुत ही इजी हो जाता है। तो जो अभी तक आप लोग सुनते आए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, आप कहेंगे मैं एक परिवर्तन होगा तो क्या होगा, नहीं, आप एक एक करके आज देखो कितने लोग समाज सेवा के लिए खड़े हो गए हैं। तो उसी प्रकार अगर एक एक अपने जीवन को ऐसा आध्यात्मिक बनाएगा, दिव्य बनाएगा, तो भारत भूमि जो है वो देव भूमि बनने में कभी भी टाइम नहीं लगे। आपके अंदर वो आध्यात्मिकता है, उस आध्यात्मिकता ने आपको यहाँ पर खींच के लाया, नहीं तो क्या आवश्यकता थी यहाँ पर आने की। तो अभी जो है आपके अंदर बीज पड़ा है, अभी उसका जरा वृक्ष बनाइए, उसको थोड़ा अपने श्रेष्ठ संकल्पों का जल दीजिए, तो आपकी ये रुचि बढ़ती जाएगी और उस रुचि के आधार पर आपके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत आभार है आने का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है और आप अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे, ऐसा हमारे को फेथ भी है आपके ऊपर। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, आपका आशीर्वाद निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव लाएगा ही लाएगा,
बाल ब्रह्मचारिणी परमात्मा की विशेष रत्न ये वरदान दे रही है, तो सिद्ध तो होना ही है, तो अपने भाग्य के लिए ताली बजा सकते हैं, बजाइए। अभी मैं आदरणीय संतोष दीदी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को ईश्वरीय प्रसाद स्वागत और मोमेंटो देकर के सम्मानित करें।